ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حزب اللہ لبنان کا تحفظ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حزب اللہ اور لبنان کے تحفظ میں اس کا کردار. اس موضوع پر گفتگو ہوگی. یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون نے علاقے کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ لبنان کو اسلحہ رکھ دینا چاہیے اور اس کی وجہ سے علاقے کو نقصان پہنچے گا. دنیا میں کون سا باشعور اور ہلکی اور پھلکی آگاہی رکھنے والا سیاسی شعور رکھنے والا شخص نہیں جانتا کہ خطے میں جب سے اسرائیل کا ناجائز وجود پنپا ہے اس وقت سے اسی کے وجود سے ہی خطے میں نامنی اور بدامنی پیدا ہوئی ہے. ایک پوری تاریخ تحریف کرنے کی کوشش گئی، پوری فلسطینی قوم کو بے گھر کرنے کی کوشش کی گئی، ایک پورا فلسطین یا یوں کہا جائے کہ ملک فلسطین، ارض فلسطین جغرافیائی نقشے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان کہ حزب اللہ سے علاقے کو نقصان پہنچے گا، ظاہر ہے کہ یہ وہ بیان تھا کہ جس پر علاقے کی بیدار ضمیر عوام اور قوم کو غصہ ہونی تھا، اور چنانچہ حزب اللہ لبنان نے بھی اس پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس طرح کا بیان کیوں دیا، اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد اور محرکات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں. اس کے لیے ہم نے اپنے یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید علی شہباز صاحب کو، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز دانشور جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ دہلی اسٹوڈیو سے بھی سینئر طرز نگار اور صحافی جناب ظفر آغا سے رابطہ ہو. بہرحال ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان علی شہباز صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
علی شہباز صاحب، بان کی مون کے اس بیان پر کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا جو ہے خلاصہ پیش کیا بان کی مون کی گفتگو کا، کہ بیان بھی بالکل غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. بان کی مون اپنے بیان کے توسط سے یہ بتا دیے کہ وہ جو ہیں ایک عامل امریکہ ہیں بجائے اقوام متحدہ کے رئیس ہونے کے. اقوام متحدہ رئیس کو جو ہے بالکل غیر جامندار ہونا چاہیے، بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، اور مسائل کی جو ہے آگاہی رکھنا چاہیے اس کو، اور اس کو جو ہے چاہیے کہ اصل جو ہے مسئلہ کیا ہے اس کی پیگیری کرنا چاہیے. اس کے برخلاف انہوں نے وہاں آیا، وہاں آنے کے بعد میں جو ہے جیسا آپ نے اشارہ کیا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ حزب اللہ کا جو اسلحہ ہے، حالانکہ حزب اللہ کا اسلحہ داخلی امور کے لیے نہیں ہے. حزب اللہ اگر نہ ہوتی تو لبنان کا وجود ہی نہیں ہوتا. ابھی میرے خیال سے جو ہے دو روز پہلے بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے، اسرائیل کے جو سابقہ وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم لبنان کو اپنے ہاتھ سے کھو دیے. 1967 کی جنگ میں ہم لوگوں نے جو ہے کچھ فتوحات وغیرہ کا جو آغاز کیا تھا، بعد کے جنگوں میں اپنے ہاتھ سے کھو دیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو لبنان پہ بھی قبضہ کرنا چاہیے. ابھی آج کے میرے خیال سے یہ تازی خبر ہے وہ، اور جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے انہوں جو ہے اسرائیل کی ترجمانی کر رہے ہیں، امریکہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کا بیان جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کے اور کسی کے مفاد میں بیان ہی نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ حزب اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ لبنان جو ہے برقرار نہ ہوتا. اور جو نہ چاہیے، ہم لوگ 6 سال پہلے 2006 کی جو جنگ ہوئی، جو 33 روزہ جنگ ہوئی، اسرائیل کا باقاعدہ پلان یہ تھا کہ حزب اللہ کو پسپا کر دیں، اور پسپا کرنے کے بعد میں لبنان کو ایک پٹھو ملک میں جو ہے تبدیل کر دیں. اور انہوں نے جو ہے بڑے امریکہ کے حمایت سے
نیا مشرق وسطی بنانے کا خواب دیکھا.
آپ کو یاد ہوگا، آپ ناظرین بھی خوب واقف ہیں، کونڈولیزا رائس اس زمانے میں امریکہ کی وزیر خارجہ تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ برتھ پینگس آف اے نیو مڈل ایسٹ، یعنی جو ہے ایک نئے مشرق وسطی کا جنم ہو رہا ہے. بہرحال جو ہے ایسا جنم ہوا کہ اسرائیل کو جو موکی کھانی پڑی، 33 روز جو مقاومت ہوئی اس میں اسرائیل کے دانت کھٹے ہو گئے. حزب اللہ نے جو ہے واقعی اسرائیل کی ہڈی سے ہڈی بجا دی، اور اسرائیل باوجود ان پیش رفتہ یا ایڈوانس یا سوفسٹیکیٹڈ इक्विपमेंट्स के, आर्मर्स के, टैंक्स वगैरह, एरोप्लेन, हर चीज थी उनके पास। उसके बावजूद भी जो उनको पछड़ा होकर वापस होना पड़ा और जो है उस मुखावमत से लेबनान बच गया, लेबनान की सालिमियत बच गई, लेबनान का इंडिपेंडेंस बच गया, लेबनान में जो है इस्लामिक ग्रुप्स की जो है वाकई जो है बच गए वो लोग वहां पे, और लेबनान अपने पैरों पे आज खड़ा हुआ है। और लेबनान कह सकता है कि फख्र के साथ अगर हिजबुल्ला ना होते तो बाकायदा, बल्कि लेबनान के जो वाकई जो बाशूर ग्रुप्स हैं उनका यही कहना है, खा वो जो है सुन्नी हो, शिया हो, हत्ता के मसीह हो। आप देखिए मिशेलोन की जो पार्टी है उन्होंने जो एतराज किया है, मिशेलोन एक मसीही है, उन्होंने कहा कि वाकई हिजबुल्ला की मुखालमत थी जो लेबनान की आजादी को जो बरकरार रखा। अगर हिजबुल्ला अगर डट के मुकाबला नहीं करती थी तो जो है इसराइल का कब्जा हो चुका होता था कुछ हिस्से पे सही, लेकिन एक पिट्ठू हुकूमत आ जाती और लेबनान जो है सफे हस्ती में बनवान एक इंडिपेंडेंट मुल्क मिट जाता। तो लिहाजा जो है ये बयान इस बात की दलील है, वो नहीं चाहते कि लेबनान की सालिमत बरकरार हो, बान की मौत, वो नहीं चाहते कि लेबनान जो है मुस्तकिल मुल्क रहे, वो नहीं चाहते कि वहां के जो वाकई जो मुखावत करने वाले, मुजाहमत करने वाले गुरु हैं वो जो है इसराइल का या अमरीका के नापाक अजायम का डट के मुकाबला करें। अब देखिए अगर जो है अगर वहां हिजबुल्ला को हटा दें तो क्या होगा, वाकई जैसा किरणोलीज ने रशरा किया था, नशा बिदुल बदल जाएगा, न सिर्फ लेबनान का, लेबनान के बाद जो है दूसरे ममालिक की भी बारी आएगी। तो अक्सर अब अरब ममालिक वो तो जो हथियार डाल चुके हैं बल्कि अमरीका के आगोश में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये इसका जो स्टैंड था, वाकई जो मुखावत थी हिजबुल्ला की, न सिर्फ शऊर बेदार हुआ बल्कि आप देखिए जो उसके तकरीबन चार साल बाद यानी गुज़श्ते साल जो जो तहरीकें शुरू हुई, तुनिसिया में तहरीक शुरू हुई या मसलन जो है मिस्र में तहरीक शुरू हुई या दूसरे ममालिक में बहरेन हो, उर्दून हो, यमन हो, सब हिजबुल्ला की मुखावत का नतीजा है। ये वाकई उनके शुजाना उनका जो कार्रवाई थी उनका उसका नतीजा है कि ये लोग अच्छा उस जमाने में जबकि अरब लीडर जो है अपने खुद
ममालिकॉपुलर थे। काफी देर से मुंतजर हैं हमारे लंदन स्टूडियो में जनाब अंद्राबी साहब, हमारी आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अंद्राबी साहब सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शुक्रिया अंद्राबी साहब। आप देखें कि बान की मून ने एक ऐसे वक्त यह बयान दिया है कि हिजबुल्ला को अपने हथियार रख देने चाहिए, उसे गैर मुसल्लह हो जाना चाहिए और वो इलाके के लिए नुकसानदेह है, जब खुद अक्वाम मुत्तहिदा ही ने दसियों करारदाद लेबनान के ताल्लुक से इसराइल के खिलाफ पास की और जिस तरह से उसने गाज़वाना कब्जा कर रखा था लेबनान पर या अभी भी शबा फार्म पर जिस तरह से वो काबिज़ है और अक्वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं उस पर अमल दरामद नहीं करा सकी अक्वाम मुत्तहिदा। तो चाहिए तो ये था कि अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब इलाके के मुल्कों के दौरे पर आए तो उन्हें इसराइल को खबरदार करना चाहिए था कि वो अगर अक्वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं करेगा तो ये होगा, ये होगा, वो होगा, बजाय ये कि वो इसराइल के लिए कुछ कहते हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह लेबनान जो कि लेबनान की इज्जत, लेबनान के शरफ, लेबनान की अर्जी सालमियत, लेबनान के इख्तदार आला और उसके यानी यूं कहा जाए कि लेबनानी अवाम की मुहाफिज है और जिसकी लेबनानी अवाम, लेबनानी हुकूमत, लेबनानी फौज सब हिमायत और सपोर्ट करते हैं, उससे कह रहे हैं कि असलाह रख दें, क्यों?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दो दो बातें हैं। पहली बात इस सहूनी एंटिटी जो है इसराइल इसकी है, इसमें ये देखना है कि इसराइल असल में कोई बाज़ाबता जैसे अक्वामी आलम है, ममालिक हैं, ये कोई उस तरह का मुल्क नहीं है। ये एक पैदा करदा मगरब ने वहाँ पे प्लांट किया है, एक इसके जिम्मे एक काम है, तो इसकी बहसत एक ममलकत के जो एक रेपुटेशन होती है जैसे किसी फर्द की, किसी घर की, उसी तरह एक ममलकत की भी रेपुटेशन होती है, जो भी कोई ममलकत हो, और वो उस रेपुटेशन की हिफाजत करती है। वो चाहती है कि लोग हमें अच्छी नज़र से देखें, हम चाहे वो कुछ भी करें लेकिन उनको ज़रा अपनी उस रेपुटेशन और अपनी इमेज की वो परवाह करते हैं। लेकिन इसराइल इस तरह का कोई इसराइल इस तरह की कोई परवाह नहीं करता, इसलिए कि उसको उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, उसको कोई उसके साथ इज्जत और विकार जैसी चीज़ें कोई वाबस्ता ही नहीं करता, कोई समझता ही नहीं है कि वो इज्जत और विकार वाली चीज़ें करें। तो लिहाजा इसराइल का मसला जो है वो उसने अक्वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन जिस तरह एक ही नहीं कई जो है उसने नज़रअंदाज किए हैं, तो वो बहुत ही कंफर्टेबली इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, इसलिए कि उसका कोई इज्जत वकार दुनिया में नहीं है जिसको वो लूज कर सके। तो दूसरी बात जो बान की मून की है, उसमें एक ज़रा बुनियादी बात समझने की है, वो ये है कि बान की मून जो है यूनाइटेड नेशंस का इदारा जो है, ये तो है बहरहाल इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसके विक्टर्स थे जिन्होंने उसमें जो फतहयाब हुए, उन्होंने उस वर्ल्ड ऑर्डर को परपेचुएट करने के लिए और उसको दवाम बख्शने के लिए इदारा साजी की, और उन इदारों में यूनाइटेड नेशंस भी था। अब ये अलग बहस है कि यूनाइटेड नेशंस भी वो वर्ल्ड ऑर्डर उसको परपेचुएट नहीं कर सका, इस्लामी इनकलाब आ गया आज से 30 साल पहले, अभी इनकलाबी तहरीकें बरपा हो चुकी हैं। यानी मकसद ये था कि दुनिया में अब जो कॉलोनियल जो एक इस्तेमारी मिशन जारी था, जिसके नतीजे में ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंटल किया गया, फिर अरबों को बांटा गया, और फिर इसराइल इस्लामी दुनिया के दिल में पैवस्त किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई फिनिश्ड, अब आप कहते हैं कि अब आपका सारा मफाद, अब आपकी सारी कुव्वत इस पे होती है कि आपने जो ये सारा किया, अब कोई इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना करे, कोई इसमें खलल ना डाले। तो ये खलल ना डालने के लिए इदारा साजी की गई थी अक्वामे मुत्तहिदा और भी दूसरे जो इदारे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये अलग बात है कि अक्वामे मुत्तहिदा उसमें फेल हो गया, और अब देखते हैं कि दुनिया इस वक्त एक फैसलाकुन मोड ले रही है और बदल रही है। तो मेरी गुजारिश ये थी कि ये सही है जैसा कि आपके स्टूडियो में मेहमान बैठे हुए शहबाज साहब कह रहे थे कि ये तो बान की मून ने साबित किया कि वो तो बहरहाल अमेरिका का आदमी है, लेकिन बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि बान की मून को देखेंगे आप कि वो कभी ऐसे बयान भी देता है जो बज़ाहिर अमेरिका के मौकफ से मेल नहीं खाते, और आप समझते हैं कि शायद इसने कोई अलग लाइन इख्तियार की। तो वो हो सकता है, इसलिए कि वो तब तक हो सकता है जब तक कि वो आलमी निज़ाम जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कायम हुआ, जिसमें अमेरिका की सुप्रीमेसी, वेस्ट की सुप्रीमेसी बाकी दुनिया पे कायम हो गई, तो जब तक उस वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली कोई बात ना हो तब तक इख्तलाफ हो सकता है। बान की मून कोई बात कहे, अमेरिका कोई बात कहे, लेकिन लेबनान और हिजबुल्लाह का मसला जो है ये आलमी निज़ाम से मुतालिक एक चीज़ है। इससे आलमी निज़ाम की बुनियादें जो हैं हिल रही हैं, हिजबुल्लाह का वजूद लेबनान में, उसकी प्लेस, और उसने अपने लिए जो वहाँ पर एक प्लेस बनाई है, महज यही नहीं कि उसकी एक अस्करी हैसियत है, उसकी एक सियासी हैसियत भी है वहाँ, उसके बगैर हुकूमत वहाँ बन नहीं सकती। तो उसने लेबनान में जिस तरह अपने आप को पैवस्त किया है, और किसी जोर जबर की बिना पर नहीं बल्कि कुर्बानी के बिना पर, काबिलियत की बिना पर, और क़याम की बिना पर, और दुश्मन के आगे डट जाने की बिना पर, और फतहयाब होने की बिना पर, उसने जो अपने आप को पैवस्त किया और मनवाया है, जैसा आप सही फरमा रहे थे कि सुन्नी शिया तो दरकिनार, वहां तो मसीही और दूसरे लोग भी हिजबुल्लाह के हामी हैं। तो हिजबुल्लाह का मसला जो है ये वर्ल्ड ऑर्डर के साथ मुताल्लिक है, तो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए हिजबुल्लाह के मसले पर एक ही अमेरिका जो बात कहेगा वो बान की मून से क्या लगाएगा, यानी वहां तो इसलिए कि बान की मून तो उसका पोस्ट, उसकी जॉब तो यही है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका ने कायम किया है उसको वो मेंटेन कर सके।
जी अंदराबी साहब,
दो बातें मेरी जो है, मैं ये गुजारिशात करना चाहता था, एक तो इसराइल के ताल्लुक से और ये जो बान की मून के ताल्लुक से।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। अली शहबाज साहब, आप देखें कि हिजबुल्लाह खालिसतन लबनान का दाखिली मामला है, हिजबुल्लाह की वहाँ की हुकूमत हमायत करती है, वहाँ की फौज हमायत करती है, वहाँ के आवाम हमायत करते हैं, वहाँ के सुन्नी उसकी हमायत करते हैं, वहाँ के ईसाई और वहाँ के शिया, और जाहिर है कि इस बात का सभी को एतराफ़ है, हुकूमत ने एक नहीं हज़ार बार ये कहा है कि हिजबुल्लाह हमारी अर्जी सालमियत की ज़मीन है। तो जब हुकूमत इस बात की तायद कर रही है तो बान की मून हो, अमेरिका हो या दीगर हो, उनको इस तरह के बयान देने का क्या हक हासिल है, और क्या इस तरह के बयान लबनान के दाखिली अमूर में मुदाखलत नहीं?
نصر لبنان کے داخل انہوں نے مداخلے تھے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں کا جو یہ خطے کا نقشہ بدل جائے. چونکہ دیکھیے آپ جو ہے شام میں جو حالات جو موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں, شام میں مسئلہ داخلی مسئلہ نہیں ہے شام کا, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں کے عوام جو ہے حکومت سے بدزہ ہوں گے, چاہتے ہوں کچھ تبدیلیاں وغیرہ ہر جگہ کے عوام جو چاہتے ہیں کچھ ریفارمس وغیرہ ہونا چاہیے, کچھ ڈیولپمنٹ وغیرہ ہونا چاہیے, لیکن جو ہے وہاں کی باہر کے کچھ عناصر وہاں شام میں دخل اندازی کر کر وہاں کی حکومت کے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سارا ملک خلاف ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے, اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے, اس میں ترکی کا ہاتھ ہے, اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے, اس میں اردن کا ہاتھ ہے, اس میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے. کیوں, کس لیے؟ اس لیے کہ شام کی حکومت جو ہے اب تک جو ہے مخالفت کرتی ہوئی آئی ہے. آپ دیکھیے جبکہ مصر جو ہے کیمپ ڈیوڈ جیسے ایک بالکل شرمناک ایگریمنٹ پر دستخط کر چکا تھا اور جو ہے فلسطینیوں کی حمایت چھوڑ چکا تھا, اور اردن جو ہے اپنے آپ کو کبھی کے بیچ دیا اسرائیل امریکہ کے ہاتھ میں, صرف شام کی حکومت نے جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور گزشتہ سال یوم نقبہ کے موقع پہ یا یوم نقصہ کے موقع پہ جولان کی جو حدودیں ہیں, جولان جو اسرائیل کا قبضہ ہے, وہاں پہ جو ہے شام کے لوگ بے دفاع لوگ یعنی تظاہرات کرتے ہیں وہاں پہ پہنچے اور کچھ جو ہے اپنے جان پر جہاں بھی ہوئے. اور رہا جو ہے یہ چیزوں کو جو ہے دیکھتے ہوئے, جبکہ جو ہے اگر دیکھیے آپ اگر لبنان میں حزب اللہ ہے, اگر حزب اللہ نہ ہوتی تو لبنان کا نقشہ بدل گیا ہوتا. آپ دیکھ لیے اگر تقریباً 27 سال پہلے چلے جائیں یا تقریباً 30 سال پہلے 1982 میں جب اسرائیل کا اٹیک ہوا تھا, اسرائیل جو ہے بآسانی بیروت تک پہنچ چکا تھا جب حزب اللہ نہیں تھی. اس کے بعد حزب اللہ جو ہے ایک عوامی تحریک ہے, ایک عوامی جنبش ہے, وہاں کے عوام وہاں کے لوگ حزب اللہ کی جو ہے بنا ڈالے بنیاد ڈالے حزب اللہ وجود میں آئی, اور حزب اللہ آنے کے بعد میں لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی, شعور پیدا ہوا, اور شعور پیدا ہونے کے بعد اسرائیل سے مخاومت ہوئی. ایسی مخاومت کے اسرائیل کو جو ہے جنوبی لبنان کے جنوبی بیروت کے حصوں کو چھوڑ کر فرار کرنا پڑا, اور حتیٰ کہ جو ہے لیٹانی ریور تک جو نہر لیٹانی ہے وہاں تک انہوں نے اپنا قبضہ بخار رکھا تھا, اور وہاں پہ جو ہے کرسچن آرمی کو بنایا تھا ایس ایل اے کے نام پر, ساؤتھ لبنان آرمی, اور دراصل کرسچن تھی, اور وہاں پہ جو ہمیشہ وہاں سے چھاپہ مار حملے ہوا کرتے تھے لبنان میں. اس کا ڈٹ کے مقابلہ جو حزب اللہ کی طرف سے ہوا 2000 میں, یہ ایس ایل اے کا جو ہے پاش پاش ہو گئی, منہدم ہو گئی, اور اسرائیل کو جو ہے وہاں سے فرار ہونا چکا. چنانچہ آج ہی کی خبر ہے یہ نہر لیٹانی پر آج بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے, اس کے یعنی آب پاشی کا پروجیکٹ ہے, جس سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً 15,000 ہیکٹر زمین جو ہے وہ ہوگی پانی وارا پہنچایا جائے گا زراعت وغیرہ کے لیے, اور تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب وہاں کے جو باشندے ہیں اس نہر سے فائدہ اٹھائیں گے. اب بتائیے اگر یہ نہر پہ اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہوتا تو کیا جو ہے لبنان کے جو بستیوں کے گاؤں کے یا شہروں کے جو لوگ جنوب لبنان میں آیا اس نہر سے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ نہیں, وہ کھو چکے ہوتے اپنے خود نہر کو جو ہے کھو چکے ہوتے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہے دشمن کی آنکھ میں سل رہی ہیں. یہ حزب اللہ کے جو ہے جانفشانی کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف جو ہے نہر لبنان نہر لیٹانی سے ان کو ہٹایا گیا بلکہ جو ہے تقریباً اور جنوب تک ان کو فلسطین مقبوضہ کے سرحدوں تک ان کو فرار ہونا پڑا. اس میں شک نہیں کہ شعبہ جو فارمس لینڈس ہو رہا ہے انہی کے قبضوں میں ہے, کفر شعبہ ہے وہ بھی آج اسرائیل کا قبضہ ہے, غجر کا جو شمالی حصہ ہے وہ بھی اسرائیل کا قبضہ ہے, یہ لبنان کی زمین ہے یہ. تو لہٰذا وہ دیکھیے جولان کا حصہ بھی لگا ہوا ہے. تو لہٰذا بان کی مون کا بیان اس بات کی دلیل ہے, یہ چاہتے ہیں کہ لبنان کی مخاومت کو لبنان کے جو ہے محاذ کو کمزور کیا جائے. اگر خدا نخواستہ لبنان کا محاذ کمزور ہو گیا تو اسرائیل جو ہے بھاری ہو جائے گا, اور اسرائیل کے جو سازشکار ہیں امریکہ کے سازشکار ہیں یا وہ خائن عرب ممالک کے جو سازشکار ہیں جو شام میں لگے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے منتہا بالکل ایک امریکن زون آف انفلوئنس میں تبدیل ہو جائے, وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. تو لہٰذا بان کی مون کا بیان یہی تھا, بان کی مون یہی کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے جو عزائم ہیں یا امریکہ کے عزائم ہیں یا اسرائیل کے عزائم ہیں اس میں جو رکاوٹ حزب اللہ ہے, اگر حزب اللہ پہ زور ڈالا جائے حزب اللہ کو جو ہے خلے اسلحہ پہ مجبور کیا جائے تو خود بخود یہ منطقے میں جو ہے تبدیلی ہو جائے گی. چنانچہ اس کے پہلے کی جو لبنان کی گورنمنٹ تھی سعد حریری کی بالکل ایک مزدور گورنمنٹ تھی, وہ تو امریکہ کی پٹھو گورنمنٹ تھی, اور گورنمنٹ جو ہے اکثریت سے ہار گئی, وہ ووٹ آف نان کانفیڈنس ملنے سے گورنمنٹ کو ریزالو ہونا پڑا. جب جا کے سازش کارانہ مذاکرات انہوں نے شروع کیا اوباما کے ساتھ سعد حریری نے, اور وہاں کے جو ہے پارلیمنٹ کے ممبرز اپنا جو سپورٹ ہٹا لیا تو گورنمنٹ خود بہت کولیپس ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے حزب اللہ جو ہے بہت بڑی ایک نہ صرف جو ہے ایک عسکری جنبش ہے بلکہ ایک جو ہے سماجی جنبش ہے, ایک جو ہے واقعی جو ہے فرہنگی جنبش ہے, ایک جو ہے ثقافتی جنبش ہے, ایک جو ہے اقتصادی جنبش ہے, ایک سیاسی جنبش ہے, ہر محاذ پہ ہر اس پہ جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے. تو اس میں جو ہے امریکہ کے جو عناصر ہیں ان کے جو ہے جڑیں جو ہیں بالکل کھوکھلی ہو چکی ہیں, اور اپنے ناکام عزائم میں کامیاب نہیں ہو سک رہے ہیں. اور چنانچہ عراق کو دیکھ لیجیے آپ, عراق میں بھی امریکہ حملہ کیا, 9 سال تک وہاں پہ قابض رہا, آنے کے بعد میں آج بھی ایسی حکومت ہے جو امریکہ کا جو ہے چونکہ पॉपुलर वोट के जरिए से जो है हुकूमत इलेक्ट हुई है। नूरी मालिकी की हुकूमत जो है वो अमरीका की बिठाई हुकूमत नहीं, अमरीका को मजबूरन राजी होना पड़ा, वरना अमरीका चाहता था कि अपने पिट्ठों को लाए वहां पे, जैसा अय्याद अल्लावी है या जो है तारिक हाशमी ऐसे अफराद जिसका कोई जड़ नहीं है वहां पे इराक में, ऐसे लोगों को लेकर आगे बिठाए। लेकिन चूंकि जो है अवाम की हिमायत थी, उलमा की हिमायत थी, अहले सुन्नत हो शिया हो सबकी हिमायत थी, लिहाजा ऐसी हुकूमत तश्कील हुई कि अमरीका को मजबूरन जो है एतराफ़ करना पड़ा, राजी होना पड़ा। तो लिहाजा अमरीका जो देख रहा है ये जो मुखामत की जो लहर पहलती जा रही है ये अब मिस्र तक आ चुकी, अब मिस्र में गो के मुबारक हट चुके, गो के उबूरी काउंसिल वही मुबारक के पॉलिसी वगैरह को फॉलो कर रही है, उसी की पैगिरी कर रही है। लेकिन अगर जो इंतखाबात जो हुए, इंतखाबात नतीजा देख लीजिए आप, जो इस्लामी जमातें हैं इख्वानुल मुस्लिमीन हैं और दूसरी जमातें हैं, उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 200 वोट्स वगैरह जीतने में कामयाब हुए हैं। तो लिहाजा अब आइंदा आप देख लीजिए, आया अमेरिका के मफाद में बिल्कुल नहीं है। अगर फर्ज कीजिए मिस्र में जो है वाकई एक अवामी मरदूमी पॉपुलर हुकूमत आ जाए जो वहां के अवाम के अजायम की तर्जुमानी करे, तो फिर अमेरिका का क्या मौक़ होगा? अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अमेरिका के जो पिट्ठू है इस इलाके में, उर्दून की हुकूमत हो या सऊदी अरब की हुकूमत हो, उनका कोई जो है मकाम नहीं रहेगा। लिहाजा वो चाह रहे हैं कि साथ ही साथ इसीलिए बहरीन के जो तहरीक अवामी थे उसको कुचलें, यमन में जो अवामी तहरीक है उसको कुचलें, और साथ ही साथ जो है शाम में मदाखलत करके वहां की फिजा वगैरह खराब करें, ताकि पब्लिक को यह बावर किया जाए, वर्ल्ड ओपिनियन को यह बावर किया जाए कि वो आखिर शामी जो है असद के खिलाफ हैं। हालांकि जो है बशार असद की मुआफ़त में लाखों जो है लोग निकल आ रहे हैं सड़कों पर हिमायत करते हुए, खाओ जो है दमिश्क हो या जो है हलब हो या दूसरे शहरों लद्दाखिया हो, लाखों की हम तदाद में जो आम निकल के आ रहे हैं। तो लिहाजा हिजबुल्लाह में बता चुके, हिजबुल्लाह के रईस का जो है हसन नसरुल्लाह का कहना है कि मसला जो है इसका शाम का है, वो हल हो सकता है। हल कैसे हो सकता है? खुद जो है वहां की जो है अवाम और वहां की हुकूमत दरमियान अगर समझौता हो जाए, और वो आसान है क्योंकि अतराफ के जो ममालिक हैं, ममालिक का मतलब जो है वहां के जी असर ममालिक, जैसे कि जो है खुद तुर्की है या मसलन ईरान है, अगर यह फर्ज की जाए और जो जिम्मेदार अरब ममालिक हैं बैठे बात करें मुजाकरत करें, मुजाकरत हल हो जाएगा। इसका हल होना जो है ना बान की मून के नफा मफाद में है, ना अमरीका के मफाद में है, ना इसराइल के मफाद में। इसीलिए इन्होंने जो है हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, उनका यह मकसद यह है कि हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट साजिश बना के पेश करें, टेररिस्ट जो है जमात बना के, ताकि जो है आवाम के जहनों को जो नावाकिफ जहन है अमेरिका में हो यूरोप में मुतासर हो जाए और कहें कि भाई हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट तंजीम है, और इसके बरखिलाफ खुद इसराइल का वजूद टेररिज्म के बिना पे हुआ है। ये अगर अमेरिका इस ओटोमान एम्पायर का खात्मा ना होता, अंग्रेज आके वहां कब्जा नहीं करते, लीग ऑफ नेशंस के जरिए से, वो देखिए आप लीग ऑफ नेशंस जब जिक्र आया तो कहना चाहिए था लीग ऑफ नेशंस को अपना एक आले कार बनाकर अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया फिलिस्तीन पे और जो है लेबनान पे शाम पे सब कब्जा किए, कब्जा करके जो है फिर वहां पे लेके आए। तो आज भी जो वही हाल है, आज जो है अक़वामे मुत्तहदा ये बात जो है वाकई कहना पड़ता है कि एक अमेरिका के आलेकार बन चुकी है, इन्हीं का कोई मकाम नहीं है। इन्होंने ऐसे बयाना से बान की मून अपनी खुद इज्जत और वखार को जो है खो दिया अपने हाथ से। लिहाजा ये सिर्फ नाकाम कोशिश है, इंशाल्लाह मुखामत जो है मजबूत है, अवाम की सपोर्ट है और ये डट के खड़े रहेगी और जो है जारी और सारी रहेगी इसकी।
चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं इस वक्त हिंदुस्तान के सीनियर तज़ निगार और मुमताज़ साफी जनाब जफर आगा साहब। जफर आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। जफर आगा साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी जफर आगा साहब, बात यह हो रही है कि अभी बान की मून ने इलाके का दौरा किया और उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह इलाके के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, उसे असलहे रख देने चाहिए, जबकि दसियों करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जो इसराइल के ताल्लुक से हैं कि वो जुनूबी लबनान से वापस जाए और जुनूबी लबनान पर जा रही है तना करे वगैरह वगैरह, उसमें से किसी एक भी करारदाद पर इसराइल ने अमल नहीं किया। कहना तो यही चाहिए था कि इसराइल को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे, उसने इसराइल के बारे में ना कुछ कह के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उल्टा हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, वो हिजबुल्लाह जिसकी लबनान की हुकूमत भी हामी है, वहाँ के अवाम भी हामी है और लबनान की फौज भी हामी है, तो इनके इस बयान पर आप क्या तबसरा करेंगे?
इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। और हिजबुल्लाह कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हिजबुल्लाह कोई किसी किस्म की खुद साख्ता ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये वहां के वो लोग हैं जो लेबनान में जिनको लोग चुनकर अपनी पार्लियामेंट में भेजते हैं। और उसके बाद इस क्वेश्चन की का बयान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से आए, ये हैरतनाक बात है। और सिर्फ यही नहीं कि ये हैरतनाक बात है, बल्कि ये इस बात पे मोहर सख्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों में यूनाइटेड नेशंस एक अमेरिकन स्टूज ऑर्गेनाइजेशन बनती चली जा रही है। कम से कम उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो जो आला अफसरान हैं, आला ओहदेदार हैं, वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी से और इंतहाई पुअरपन से अब अमेरिकन मफाद के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत आप वाकिफ होंगे कि इराक के हमले के साथ हुई थी, उस वक्त जबकि दुनिया ने इराक पर अमेरिकी हमले की मुखालिफत की, इसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस की जानिब से और यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन के बिना वो इराक में चले गए, इसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका के खिलाफ किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। यूनाइटेड नेशंस में उनके सिक्योरिटी काउंसिल, उस वक्त उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने ये कहा कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हम इराक अलकायदा से मिला हुआ है और हम उसको ख़त्म करने के लिए और दुनिया को उससे जो इराक से ख़तरा पैदा हो गया वहाँ जा रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने उनको सैंक्शन नहीं दिया। इसके बाद इराक पर हमला हुआ, लाखों लोग मारे गए। यूनाइटेड नेशंस का फ़र्ज ये था कि वो सदर बुश के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा कायम करता। सदर बुश ही नहीं, अमेरिकन वो तमाम अमेरिकन हुक्काम के साथ उसी किस्म से मुकदमा होना चाहिए था जैसा सर्बिया के उन लोगों का हुआ जिन्होंने जेनोसाइड किया, कत्ले आम किया था सर्बिया में, उससे बढ़ के कत्ले आम इराक में हुआ, लेकिन यूनाइटेड नेशंस खामोश रहा। यह इस बात की खुली वजाहत करता है कि अमेरिका, क्योंकि आप वाकिफ होंगे कि मसला यह है कि यूनाइटेड नेशंस एक तरह से अमेरिका के की कठपुतली इसलिए बनता जा रहा है कि जो सबसे बड़ी फंडिंग है यूनाइटेड नेशंस की, वो अमेरिका को जो अखराजात है यूनाइटेड नेशंस के, उन अखराजात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को देता है। इसलिए जो भी सबसे पहले वो करते क्या है कि जो भी सेक्रेटरी जनरल बनने वाला होता है वो उन ऐसा एक नुमाइंदा लेके आते हैं जो पूरी तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम करे, फिर उसकी बागडोर पीछे से उनके हाथ में इस तरह रहती है कि माशी एतबार से, फंडिंग के एतबार से यूनाइटेड नेशंस के ऊपर उनका पूरा कब्जा है, और इस वजह से बान की मून हों या दूसरे हों, वो वही करते हैं जो इस किस्म का बात जो अमेरिका के मफाद में होता है। चुनांचे आप दुनिया जानती है, ये हम आप नहीं बल्कि ये बिल्कुल खुली बात है कि हिजबुल्ला वो तंजीम है जो हुर्रियत में यकीन रखती है, आज़ादी पसंद है, इलाके में भी न सिर्फ लेबनान में बल्कि इलाके में मसला फिलिस्तीन में मसलन उसका जो रोल है वो दुनिया पर आया है कि उसने हमेशा इसराइल की जारहियत की मुखालफत की है और फिलिस्तीनियों के जंग के हकूक आज़ादी और उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसकी मदद की है, उसकी उसके साथ सिर्फ जबानी बयानात ही नहीं बल्कि दामे दिरहमे सुखने हर तरह से हिजबुल्ला ने फिलिस्तीन की मदद की है। ऐसी तंजीम के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का ये बयान के इलाके में हिजबुल्ला से खतरा हो सकता है, सिर्फ चौंकाने ने वाला नहीं बल्कि आलम सारी दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि अगर उसने अब भी यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ इस किस्म की आवाज़ों को टॉलरेट किया, उनको बर्दाश्त किया, तो यूनाइटेड नेशंस की न सिर्फ साख गिर जाएगी बल्कि वो जिन मकासद के लिए कायम किया गया था वो मकासद खतरे में आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आलमी बिरादरी के लिए इस मौके पर खड़े होने का वक्त है, इस मामले को खुद यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के बाहर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और जल्द अज जल्द इस मामले को पे ये यूनाइटेड नेशंस पे कुछ रोक लगनी चाहिए।
जी जफर आगा साहब, आप ही से अगला सवाल फिर करना चाहूंगा कि अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के इस बयान के बाद हसन नसरुल्लाह साहब ने अपने एक खिताब में जो कि अरबैन हुसैनी की मुनासिबत से उन्होंने दिया, कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा, अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, सलामती कौंसल اور ان جیسے دیگر اداروں پر بھروسہ اور تکیہ کرنے کا نتیجہ پوری فلسطینی قوم کی آوارہ وطنی، بے گھری، ان کی بے عزتی اور ان کے قتل، ان کی غارت گری پر منتج ہوا۔ تو کیا ایسے اداروں پر بھروسہ کر کے ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں جس کے پیچھے ہماری پوری قوم کھڑی ہوئی ہے؟
بہت پرٹینٹ بات بڑی موضوع بات کہی ہے حسن نصر اللہ نے۔ اور دنیا، میں سمجھتا ہوں وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ دنیا کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آیا یونائٹڈ نیشنز پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، بلکہ اب یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے جیسا حسن نصر اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان اداروں پر جن کا انہوں نے نام لیا، وہ ادارے، انہوں نے ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہ کہا کہ یہ وہ ادارے ہیں جو مغربی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز میں اقوام متحدہ میں اکثریت مغرب کی نہیں ہے، دنیا میں اکثریت مغرب کی نہیں ہے۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب جو قیام ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز کا، ان کو بنانے والے بھی وہ تمام ممالک تھے جو مغربی ممالک، امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ، فرانس، ان جیسے ملکوں نے مل کے یہ ایک تنظیم، اس تنظیم پہ تخلیق کی تھی، اور چنانچہ پہلے دن سے انہی ممالک کا یونائٹڈ نیشنز کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ اور آپ کسی بھی کرائسس کے موقع میں دیکھیں، دنیا کے کسی بھی موقع، بڑی موقع کے اوپر دیکھیں، ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز مغرب کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ چنانچہ اور اب عالم یہ ہے کہ 1940 کی دہائی میں دوسری جنگ آزادی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جب یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہوا، اس وقت مغرب کا دنیا کے اوپر دبدبا تھا، زیادہ تر ممالک مغرب کی غلامی کے شکار تھے۔ تب سے اب تک تقریباً 70-80 سال کا وقفہ گزر چکا ہے۔ اس وقفے میں نہ صرف یہ کہ ایشیائی اور افریقی ممالک، عرب ممالک آزاد ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بہت حد تک اب خود مختار ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اکانومیز اب دنیا میں بڑی اکانومی ہو گئی۔ اس عالمی پس منظر میں یونائٹڈ نیشنز کا کھل کر اسی طرح سے عمل درآمد برقرار رکھنا جیسا کہ وہ 40-50 کی دہائی میں کرتا رہا ہے، یہ قطن میں سمجھتا ہوں کہ عالمی مفاد میں نہیں ہے، اور چونکہ عالمی بیلنس آف پاور بدل چکا ہے، سوویت یونین ختم ہو گیا، مغرب کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، امریکہ اور یورپ میں سخت معاشی بحران ہے، اس کے برخلاف بیلنس آف پاور جو ہے وہ ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، عرب میں ایک نئی لہر ہے۔ ان تمام پس منظر کے تحت یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ہاتھ سے یونائٹڈ نیشنز کا اقتدار نکل کر وہاں کی جنرل اسمبلی کے ہاتھ میں آنا چاہیے، جس میں جہاں کے ایشیا،
بہت شکریہ آپ کا،
اور افریقی ملکوں کی میجورٹی ہے۔ اور جی
بہت شکریہ آپ کا،
اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک بہت بڑا مسئلہ عالمی برادری کے سامنے کھڑا ہو جائے۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا وقت رہا تو۔ اندرابی صاحب، آپ دیکھیں بان کی مون کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے کہ جب ابھی حال ہی میں اسرائیل کے اندر سے بعض رپورٹیں ایسی آئی ہیں، خود اسرائیلی وزیر اعظم نے اور بنیامین نتنیاہو نے، اسرائیلی فوج کے سربراہ جو اشکنازی ہیں انہوں نے، اور اسی طرح جو سابق سربراہ بن الیازر، ان سبھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج سے اسرائیلی فوجی جوان روزانہ فرار کرتے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے ان مفرور فوجیوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو اپنے فرار کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم 2006 میں اور اسی طریقے سے 2009 کے آغاز میں حزب اللہ لبنان اور حماس سے بری طرح شکست کھا چکے ہیں، تو ہمارے وجود کا فائدہ ہی کیا، اور ہم ان طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ یعنی جو مزاحمتی قوتیں ہیں علاقے میں، حماس ہو، حزب اللہ ہو، اور ان سے اس طرح سے سخت یہ خائف ہیں کہ اسرائیلی فوجی فرار کر رہے ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ بنیامین نتنیاہو، بن الیازر اور اشکنازی جو فوجی سربراہان ہیں اور وزیر اعظم ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اسرائیل بتدریج نابودی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ तो ऐसे में जब इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं तो हिजबुल्ला को नियथा करना, उसको गैर मुसल्ला करना और इसका मुतालबा करना, क्या इसी बात का पता नहीं देता है कि बान की मून मगरबी ममालिक अमरीका किसी न किसी तरह इसराइल को नाबूदी से बचाना चाहते हैं?
आपने मुझे कुछ जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
हमारे साथ ही कोशिश करेंगे कि आपसे रब्ता सही तरीके से हो पाए। शहबाज साहब, अगर आपने मेरा ये सवाल सुना तो मैं इसका
जी 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 हाँ, तकरीबन जो उनका हदफ यही है कि वहाँ इसराइल में रखा क्या है। इसराइल खुद एक मसनूई मुल्क है, इसराइल जो है वहाँ के बाशिंदे नहीं थे जो इसराइल बना है। जैसा कि मैं गुफ्तगू के आगाज में अर्ज कर रहा था आपकी और नाज़रीन की खिदमत में, लीग ऑफ नेशन के मैंडेट के तहत बरतानिया का कब्जा हुआ उस इलाके पे, और वहाँ कब्जा होने के बाद ही लाखों की तादाद में जो सहयोनी थे, जो यूरोप के जो ज्यूज थे, हालांकि उनका बनी इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी मत समझिए कि बनी इसराइल थे, अपने आप को यहूदी कहते जरूर थे वो लोग, लेकिन बनी इसराइल नहीं थे। उसका मतलब यह है कि उनको ये सरजमीन फिलिस्तीन से कोई किस्म का ताल्लुक ही नहीं था। वो वहाँ के जो है खजर वारा के ईस्ट यूरोपियन ममालिक के जहाँ के बाशिंदे थे, जो तूल तारीख में यहूदियत इख्तियार किए थे, उनको ला कर वहाँ बसाया गया। बसाने के बाद में जब बरतानिया 1948 में दंगे दूसरी जंग अजीम के बाद बरतान का तख्लिया हुआ, तो जो है एक उनको ईमान दी गई, इशारा किया गया कि वहाँ पे के मुल्क बनाया जाए, उन्होंने टेररिज्म की बुनियाद पे मुल्क बनाया। अब बताइए, अब जो बाहर से आग महाजरत करके आए हैं आके जो हम वहाँ पे फिलिस्तीनियों को, अरबों के, मुसलमानों को, यहाँ तक कि वहाँ के जो मसीही क्रिश्चियन जो फिलिस्तीनी हैं उनको बेघर करके वहाँ पे खबर, हमको क्या हमदर्दी होगी उस मुल्क से, उस वतन से, उनके ताल्लुक ही नहीं है उनकी जमीन से। जैसे आपने इशारा किया बिन्यामीन का, नितानियों का इनका बयान द्वारा देते हुए कि ये लोग जो है फरार की कोशिश में है, इनको कोई हिम्मत नहीं है, कोई इनके पास अजम नहीं है मुकाबला करने का, खायफ है, तरसनाक हो चुके हैं लोग। तो इसका मतलब यही है कि चूंकि जमीन से इनका ताल्लुक ही नहीं है, ये रहने वाले हैं यूरोप के, अमरीका के उसी ममालिक में, और बेहतर इनके लिए चले जाना। और मैं जो है नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करूँ, उसके पहले भी शायद गुज़िश्ता कुछ गुफ्तगू वगैरह में अर्ज किया था कि ये इसराइल का वही हाल होगा, वही हश्र होगा जो आज से तकरीबन 800 साल पहले क्रूसेडर्स जो आए थे यूरोप से आकर फिलिस्तीन पे कब्जा करके वहाँ पे लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम बनाए थे, उसका हाल हुआ। आप देखिए तारीख का मुतालिया करें आप, तकरीबन 88 साल तक ये लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम का वजूद रहा सरजमीन फिलिस्तीन पे, बैतुल मुकद्दस पे। लेकिन जब मुसलमानों में बेदारी की लहर जो है फैलने लगी, मुसलमान बेदार हुए, आपस में इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, शऊर हुआ, तो मुसलमानों ने जो है महासरा तंग किया। नतीजा ये हुआ कि 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूब के हाथ में ये बैतुल मुकद्दस की जो हुकूमत थी या क्रूसेडर स्टेट था वो कोलैप्स हो गया, और उनको किश्ती में बैठ के वापस होना पड़ा। और मुसलमानों ने इन पर वाकई बहुत बड़ा एहसान किया, रहम किया, किसी किस्म का जुल्म नहीं किया, बल्कि इनके लिए जहाजों वगैरह फराहम की के चले जाएं। और आज भी देखिए कि वहाँ के फिलिस्तीनी जो है वो यही कहते हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए सरजमीन फिलिस्तीन के लिए, वहाँ के जो आके यहाँ पे बस चुके हैं गैर नाजायज तरीके से, अपने अपने वतन को वापस होना चाहिए। तो लिहाजा जबकि वहाँ का इकतदार कमजोर होता जा रहा है, माजरत चाहता हूँ नाज़रीन खिदमत में, इकतदार जो है इसराइल का बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जैसा कि आपने इशारा किया कि दो जगह जो है 2006 के और 2008 के आखिर में जो गजा पर जो हमला हुआ, इसमें जो है इसराइल का जो मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी थी, यानी उनका जो है जो अखार था, आजम था, या समझे वो तकरीबन टूट चुका हो, यानी अपनी बावजूद खुदरत के खोल से कुछ नहीं कर सके। तो लिहाजा एक वहशतनाक जो है एक वहशत था फैला हुआ है वहां पे, उनको अपने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल तशवीश है, बहुत बड़ी तशवीश है, आकर होगा क्या, क्योंकि जो है बजूदी इंशाल्लाह अगर खुदा चाहा तो जो है इसराइल जो है सफहस्ती से खुद बहुत खत्म ही हो जाएगा। और जो खत्म होना जो है वाकई एक नेचुरल चीज है, एक वाकई फितरती चीज है। और रहा जबकि जो इकतसाद ना हो वहां पे जो है कोई रहने का कोई अंगेजा ना हो तो कब तक ये लोग वहां रहे रहते हैं? तो लोग जो है
फरार कम बचा है। अंदराबी साहब, वक्त हमारे पास कम बचा है, एक सवाल आपसे करूंगा और आखिरी सवाल जफर आगा साहब से करूंगा। हसन नसरुल्ला साहब ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में एक बड़ा अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हिजबुल्ला से या हिजबुल्ला की कुव्वत से अमरीका, इसराइल और बान की मून जैसे लोग खायफ हैं और खौफजदा हैं। क्या कहेंगे?
देखिए, मैं मुझे अफसोस है मैं आपका पिछला सवाल नहीं सुन सका। मैं देख रहा था कि आप काफ़ी वो तवील कुछ फरमा रहे थे लेकिन मैंने वो मिस किया। तो हसन नसरुल्ला साहब जो हैं वो बहुत कम इस तरह आते हैं और तकारीर करते हैं, और अभी उनने आशूरा के मौके पे भी जो तकरीर की वो भी सुनने के काबिल और उसमें भी बहुत बहुत अच्छे बहुत ज़बरदस्त नकात थे उसमें तो। लेकिन ये सही बात है कि अमेरिका ने और अक़्वामे मुत्तहिदा ने अब वो बिल्कुल इसके मुतरफ़ हैं, बल्कि उनका उनका जितना एतराफ़ है वो जितना समझते हैं हिज़्बुल्लाह को उतना वो ज़ुबान पे नहीं लाते हैं, इससे कि वो हिज़्बुल्लाह को वो बेनिफिट नहीं देना चाहते कि वो हिज़्बुल्लाह से खाइफ हैं, लेकिन हैं वो बहुत खाइफ हिज़्बुल्लाह से। लेकिन मैं आपकी उस सवाल की तरफ जो हसन नसरुल्लाह साहब ने ये कहा था कि हमें इन पर तकिया नहीं करना चाहिए, उस ताल्लुक़ से मैं मुख्तसरन, अभी वक्त कम बचा है, मुख्तसरन मैं आपसे ये कहूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अहम बुनियादी बात की तरफ इशारा किया है, वो ये कि असल में इस वक्त ये अमेरिका और सहूनी और आल सऊद और ये जो दूसरे ममालिक हैं ये एक तरफ हैं, ये कोई सुन्नी वगैरह नहीं है, ये एक तरफ का ये फेंस के उस तरफ हैं और दूसरी तरफ इस्लामी तहरीक है, इस्लामी तहरीक की रहनुमाई इस वक्त ईरान कर रहा है और रहबर मुअज़्ज़म की शक्ल में ईरान इसकी उसकी रहनुमाई कर रहा है और उसके पीछे जो कुव्वतें हैं उनमें हिज़्बुल्लाह बहुत अहम कुव्वत है। अब ये इस्लामी तहरीक के ताल्लुक से एक बुनियादी नुक्ता है कि हमें उन इदारों पर तकिया नहीं करना चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए जो खुद इस्तेमार ने बनाए हैं और इस्तेमार के दवाम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, हम उनसे हम उन्हें कुछ इस्तेमाल करें, हम उनमें देखें कि अभी अगर कभी कोई फायदा हो, लेकिन उन पर हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए। तो ये असल में हसन नसरुल्लाह ने बात कही थी।
बहुत शुक्रिया आपका,
बहुत ही अहम बात है और ये तमाम उन हजरात को समझना चाहिए।
बहुत शुक्रिया अंदरावी साहब, माजा चाहते हैं कि वक्त हमारा खत्म हो चाहता है, सिर्फ दो मिनट का वक्त बचा है। जफर आगा साहब, हिज़्बुल्लाह लबनान के सेक्रेटरी जनरल ने बयान दिया है कि हमारी ये जो दिफाई कुव्वत है उसमें 2006 के मुकाबले में काफ़ी इजाफा हुआ है और काबिल मुकायसा भी नहीं, मुवाजना भी नहीं किया जा सकता। एक ऐसे वक्त जब 2006 में बुरी तरह से शिकस्त खा चुकी है इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह से, फिर 2009 के आगाज में हमास से, और अब मिस्र जैसे मुल्क में इसराइल के खिलाफ नफरतों का लावा उबल पड़ रहा है, तो आप खुद इसराइल के वजूद को कहाँ देख रहे हैं? बहुत मुख्तसर जवाब चाहूँगा।
लुकपर रुबाब, ये कि ये 21वीं सदी जो है ये दो तीन बातों के लिए याद की जाएगी। पहली बात कि अरब अवाम में अब सारे आलम अरब में और सारे में आलम अरब में आलम इस्लाम में एक जमहूरी लहर बहुत फैलने वाली है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात पैदा होने वाली है अमेरिका और मगरब की तबाही, और तीसरी बात उसके साथ साथ इसराइल का खात्मा। ये तीनों बातें 21वीं सदी में को डिफाइन करने कर रही हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है और मगरिब को जो परेशानी है ईरान से, हसन नसरुल्ला से, हिज़्बुल्लाह से, या आलम अरब में जो एक नई लहर चल रही है जमहूरियत की, वो इसी बात की परेशानी है और इसी बात की घबराहट है कि उसमें उनको इस आहट की का अंदाज़ा हो रहा है, ये इस बात की आहट साफ सुनाई दे रही है कि ये उनके खात्मे का वक्त हो, वो चाहे इसराइल हो, अमेरिका हो, या मगरिब के हाथों में कठपुतली बना यूनाइटेड नेशंस हो, ये उनके 21वीं सदी उनके खात्मे का वक्त है। इसी घबराहट में कभी ये कहा जाता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है उसको ख़त्म कर दो, कभी ये कहा जाता है कि हिज़्बुल्लाह खतरा है, कभी ये कहा जाता है कि अरब में जो हो रहा है वो हमारे हक में है या नहीं है। ये वही घबराहट है जो यकीनन अब इस सदी में जिसने रंग अपना दिखाना।
बहुत शुक्रिया।
इस आहट के बढ़ते कदमों को अब कोई अमेरिका, कोई यूनाइटेड नेशंस, कोई इजराइल रोक नहीं सकता।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। इस बढ़ते हुए कदम को अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती और 21वीं सदी बहुत बड़ी तब्दीलियों की सदी है जिसमें सरफहरिस्त इसराइली वजूद का खात्मा है। ये थे हमारे मौजूद मेहमानों के नज़रियात और उनके ख्यालात। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास रिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।